नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में वर्तमान संघर्ष की स्थिति लगातार बदल रही है और इससे पूरी दुनिया किसी न किसी रूप में प्रभावित है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में नागरिकों को इस संघर्ष के प्रभाव से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। श्री मोदी की अध्यक्षता में कल मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक हुई। इसमें वर्तमान स्थिति और मौजूदा तथा प्रस्तावित राहत उपायों की समीक्षा की गई। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने चेतावनी दी है कि अगर अमरीका ईरान के बिजली संयंत्रों पर हमला करता है तो ईरान होर्मुज जल डमरू मध्य को पूरी तरह से बंद कर देगा और जल मार्ग को तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक कि ईरान के बिजली संयंत्रों का दोबारा से निर्माण नहीं हो जाता। इस बीच एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस आज पश्चिम एशिया से आने जाने वाली कुल 30 निर्धारित और विशेष उड़ानें संचालित करेंगी। कई मार्गों पर सेवाएं सीमित रहेंगी। दोनों एयरलाइंस जेद्दा रूट पर निर्धारित सेवाएं जारी रखेंगी। भारत और जेद्दा के बीच कुल 10 उड़ानें संचालित होंगी, जिनमें एयर इंडिया दिल्ली और मुंबई से एक एक वापसी उड़ान शामिल हैं। एयर इंडिया संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से कुल 12 गैर निर्धारित उड़ानें संचालित करेंगी। उत्तरी अमरीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अन्य क्षेत्रों से आने जाने वाली एयर इंडिया की सभी उड़ानें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चलती रहेंगी। असम, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आज शाम समाप्त हो जाएगी। इन दोनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में मतदान 9 अप्रैल को होगा। नामांकन पत्रों की जांच मंगलवार को होगी। उम्मीदवार 26 मार्च तक नाम वापस ले सकते हैं। तमिलनाडु विधानसभा के लिए 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में मतदान 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को कराया जाएगा। तमिलनाडु में और पश्चिम बंगाल में पहले चरण की अधिसूचना 30 मार्च को जारी की जाएगी। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान की अधिसूचना 2 अप्रैल को जारी होगी। सभी 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में मतगणना 4 मई को होगी। निर्वाचन आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के तहत पश्चिम बंगाल में पहली पूरक मतदाता सूची आज प्रकाशित करेगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि सूची में उन मतदाताओं के नाम होंगे जिनके दस्तावेजों का पूर्ण सत्यापन हो चुका है और जो निर्णय सूची में लंबित हैं। सूची प्रकाशित होने के बाद यदि मतदाताओं को कोई आपत्ति है तो वे ऑनलाइन ECI नेट ऐप या आयोग की वेबसाइट के माध्यम से या जिला मजिस्ट्रेट और उप विभागीय अधिकारियों के कार्यालयों में जाकर आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 7वां चरण शुरू करेंगे। इस चरण में खनन पट्टे और समग्र लाइसेंस के तहत कई राज्यों में 19 खंडों की नीलामी होगी। इनमें खनिजों की विविध श्रृंखला शामिल है जो स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत प्रौद्योगिकियों, उर्वरकों और रणनीतिक उद्यमों जैसे क्षेत्रों के लिए आवश्यक है। खान मंत्रालय ने बताया कि ये नीलामी पारदर्शी 2 चरण वाली प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। सबसे ऊंची बोली लगाने वालों को खंडों का आवंटन किया जाएगा। अब तक 6 चरण की नीलामी में 46 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी की गई है। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन आज लोकसभा में कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेंगी। वित्त विधेयक 2026 भी आज सदन के कामकाज की सूची में विचार और पारित करने के लिए शामिल है। राज्यसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेंगे। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स बुधवार से छत्तीसगढ़ में शुरू हो रहे हैं। राज्य सरकार के खेल और युवा कल्याण विभाग ने बताया कि खेल सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण 3 शहरों रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में आयोजित किए जाएंगे। 25 मार्च से 3 अप्रैल तक खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में 2300 से अधिक एथलीट और 3700 प्रतिभागी शामिल होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।